السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين. آج ہم انشاءاللہ تعالی سورة البقرہ آیت نمبر 92 سے 101 تک کریں گے، اور اس سے پہلے ہم تفسیر پہ چلیں. ہم نے پچھلی آیات میں کیا دیکھا؟ اگر کسی نے پچھلی آیات کی تفسیر نہیں سنی تو اس کو ضرور سن لیں، کیونکہ یہ ایک ہی مضمون ہے جو آگے تک چل رہا ہے. نبیوں کے ساتھ جو بنی اسرائیل کا طرز عمل رہا، اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے انکار کیا باوجود اس کے کہ ان کے پاس نشانیاں موجود تھیں. تو ان کو ان کی چارج شیٹ ہے، یہ سمجھ لیں کہ ان کے جو جرائم ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے. اس میں ان کے لیے تو تنبیہ ہے ہی، وارننگ ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمان اس کو پڑھ رہے ہیں ان کو بھی آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو ان لوگوں نے کیا کیا حرکتیں کیں، اور چنی ہوئی قوم کو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے. وہ جس مقام پہ اس وقت تھے ہزاروں سال پہلے، جس اللہ تعالیٰ نے درجے پہ ان کو رکھا ہوا تھا کہ فضیلت دی تھی تمام جہانوں پہ، اب وہ فضیلت تمہارے پاس ہے. تم نے وہ کام نہیں کرنے جو وہ کرتے رہے ہیں. تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ دیکھو وہ کہتے تھے کہ ہم تو صرف اپنے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو ہمارے پاس نازل ہوا اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی پہ بھی نہیں رکھتے، تو پھر تم نے اپنے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ یہ تو بتاؤ یہ کون سا ایمان ہے؟ وَلَقَدْ، آج کی آیات ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 92 سے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق. اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا لا جو ہے نا، یہ تاکید کے لیے، اور قد بھی یقینی بات کے لیے آتا ہے. یعنی جیسے ہم کہیں کہ یہ یقینی بات ہے، یعنی کوئی سی بات کو جو پاسٹ میں ہو چکی ہو اس کو بیان کرنے کے لیے قد لگایا جاتا ہے. تو وہ چیز یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ لقد، البتہ تحقیق ایسے ہی ہوا کیا، کہ جاءکم، یقینی بات ہے یہ کہ آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات، ساتھ روشن دلائل کے، روشن نشانیوں کے. موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس معجزات لے کر آئے تھے. دیکھیں آپ کو پہلا تو معجزے پتے ہیں کہ وہ ید بیضا تھا، ہاتھ کا روشن ہونا، اور عصا کا تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے معجزات فرعونیوں کے لیے، جو قبطی قوم تھی اس کے لیے اترے تھے. ہاں بنی اسرائیل کے لیے دیم سیلف بہت سارے معجزات آئے تھے. سب سے پہلے تو انہوں نے یہی معجزہ کتنا بڑا دیکھا کہ سمندر کو ان کی آنکھوں کے سامنے پھاڑ دیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے جب وہ میدان تی میں آ گئے اور وہاں پہ اتنے سال تک سرگردان رہے، تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزے بھیجے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا مارنے سے 12 چشمے پوٹ گئے، پھر من و سلویٰ اترا، پھر اللہ تعالیٰ نے سائبان بھیج دی ان کے لیے کہ دھوپ نہ ان کو لگے، اور یعنی ہر طرح سے ان کی کمفرٹ کا خیال رکھا. اور اس صحرا میں جہاں پہ کوئی چیز نہیں تھی، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام فرمایا کہ وہ جیسے جیسے چلتے جاتے تھے بادل ان کے ساتھ ساتھ چلتے جاتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس بینات لے کر آئے. اب یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی ہیں ان کے پاس تو یہ نہیں چیزیں آئیں، مگر وہ موسیٰ علیہ السلام کو ہی مانتے تھے نا، تو یعنی آپ کے پاس آئے، یعنی آپ کی قوم کے پاس آئے. ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو، من بعد ہی، اس کے بعد. یہاں پہ معبود نہیں کہا گیا، کیونکہ معبود کہنا تو ایک توہین ہوگی عبادت کی بھی، کہ عبادت بھی کی تو کس چیز کی، کہ ایک بچھڑے کو معبود بنائے. یہاں پہ صرف کہا گیا بچھڑے کو بنا لیا، तो इस लायक नहीं है कि उसके लिए माबूद होने का भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए। अल्लाह ताला के अलावा कोई इस लायक नहीं है। तो उन्होंने ईमान के तो बड़े दावे किए, लेकिन मिम बाद ही, उसके बाद, किसके बाद? ही की ज़मीर मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ जा रही, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद। किस वक़्त? मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, उनकी वफ़ात के बाद मुराद नहीं है, बल्कि जब वो तूर पे गए थे तो उनके बाद इन्होंने पीछे से बछड़े को माबूद बना लिया था, जो कि हम पढ़ेंगे भी कि कैसे सामरी के कहने के ऊपर इन्होंने बछड़े को पूजा भी, और उसको कैसे उसका बना के और उसमें से आवाज़ निकलती थी, और हम पढ़ भी चुके हैं कि किस तरह से अल्लाह ताला ने फिर इनको कत्ल करने का हुक्म दिया। वअन्तुम ज़ालिमून, और तुम जालिम हो, यानी तुम तो कहते हो हम ईमान वाले हैं, जबकि तुमने तो अपने नबी की ज़िंदगी में इतना बड़ा शिर्क किया कि बछड़े की पूजा शुरू कर दी, और तुम जालिम हो। जालिम से मतलब है यहाँ पे सबसे बड़ा जुल्म तो शिर्क है, उसके अलावा भी जितने गुनाह हैं वो जुल्म ही है, जो इंसान अपनी जान पर करता है। तो जुल्म क्या होता है? किसी चीज़ को उसकी जगह से हटा देना, यानी उसको उसका हक ना देना। ये अल्लाह ताला का सिर्फ हक है कि उसकी इबादत की जाए, और किसी का हक नहीं है। तो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का दावा करते हो, और तो दावा करने से तो कुछ नहीं होता, असल बात तो ये कि उनकी फर्मा बरदारी करनी थी, और तुमने उल्टा ये जुल्म किया कि शिर्क करने लगे। तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानता, इसका मतलब वो भी तो जुल्म कर रहा है। और इससे भी बड़ी बात, जो अल्लाह ताला को उसका हक ना दे, वो कितना बड़ा जालिम है, सोचे। अल्लाह अकबर। और फिर तुमने क्या किया? वह इद अखदना मीसाकुम, और जब लिया हमने पक्का वादा तुमसे, मीसाक ये कैसे लिया था और किस चीज का मीसाक इनसे लिया था? हाँ, पीछे आयात में पढ़ते आए हैं कि अल्लाह ताला ने इनसे कितने मीसाक लिए। अब इस पारे में आप जरा एक एक करके गिनिएगा कि क्या क्या मीसाक लिए गए। हमने आयत 83 में भी पढ़ा मीसाक इनका, फिर हमने आयत 84 में भी इनका मीसाक पढ़ा। अब यहाँ पे किस मीसाक की बात हो रही है? मीसाक मैंने जैसे बताया था, पक्के वादे को कहते हैं, अहद को कहते हैं। जैसे आप ओथ ले लें कि हम ये करेंगे, ठीक है, तो अब ये बहुत पक्का उसको कर दें। अब यहाँ पर पीछे भी ये बात गुजर चुकी है, यहाँ पर तकरार आई है, मगर उसका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है ना, यहाँ पे कोई और बात की गई है। तो उनके बताया गया कि तुम्हारा तो ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि तुम ये करते रहे हो, तो देखो कि जब तुम्हारे से पक्का अहद लिया गया था, और तुम इसके लिए क्या, किस चीज़ का अहद था? खुदू मातईना कुम बिकुवते वस्माऊ, ये आगे आ रहा है ना, कि तौरात को मजबूती से पकड़े। और इन्होंने जब नहीं माना तो वरफअना फौकाकुम तूर, तो अल्लाह ताला ने तूर पहाड़ इनके सरों के ऊपर मुअल्लक कर दिया, बाकायदा तूर पहाड़ इनके ऊपर आया, और कहा गया कि तुम इसके अंदर पीस दिए जाओगे अगर तुम नहीं मानते, अगर तुमने ये बात ना मानी। तो यानी इनको एक धमकी दी गई थी, और इन्होंने कहा कि हम मानते हैं, हम मानते हैं, लेकिन आंखें चुरा के ऊपर भी देख रहे थे कि गिर तो नहीं रहा हमारे ऊपर। तो इन्होंने तो ये बहुत पक्का अहद लिया, लेकिन आप इन सब आयात में देखेंगे अहद शिकनी की बात बहुत ज्यादा आ रही है, कि अहद करते और तोड़ देते, उनको इससे कोई परवाह नहीं थी कि हमने कोई अहद किया है अल्लाह ताला से। तो अब क्या था कि वरफाना फौका कुम तूर, उनके ऊपर हमने बुलंद कर दिया तूर को, कि अब क्या करो, खुदू पकड़ो, मा आतैना कुम, जो अल्लाह ने तुमको दिया है, जो हमने तुमको दिया, क्या थी चीज़ थी वो? तौरात, भी कुव्वतेन, कुव्वत के साथ, वस्माऊ, और सुनो इसको, यानी ये अहद लिया गया था। कि मजबूती से इसको पकड़ो। मजबूती से पकड़ने का मतलब क्या है? यानी इसकी तालीमात को सुनो, फिर समझो, फिर उसके ऊपर अमल करो। इसी वजह से कुरान करीम के आदाब में से भी ये है कि जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो खामोश रहा जाए और गौर से सुना जाए। जैसे इनको भी कहा गया था गौर से सुनना है तुमने। तो कालू, उन्होंने कहा समयना व आसईना, हमने सुना लेकिन हमने नाफरमानी की, हम नहीं मानेंगे। ये इनके बड़ों का किरदार था। अब देखें, क्या हमारे साथ भी कोई अहद किया गया है कुरान के लिए कि हमने उसको सुनना है और उसको हमने मजबूत पकड़ना है? क्या हमारे साथ कोई ऐसा अहद है? यहीं पे देखते हैं इस चीज को कि देखें, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअ वला तफरकू, सूरह आले इमरान में। वातसिमू एहतसाम कहते हैं कुव्वत के साथ पकड़ने को, मजबूती से थामने को। हमसे भी अहद लिया गया, पकड़ो इसको मजबूती के साथ, यानी इसको पढ़ो जैसे पढ़ने का हक है, इसको समझो जैसे समझने का हक है, इसके ऊपर अमल करो, इसको आगे तक पहुंचाओ, ये इसके हकूक हैं। जैसे उनसे अहद लिया गया तो हमारे से भी अहद लिया गया कि हमने ये हकूक अदा करने हैं। तो उनको इसके लिए तूर पहाड़ ऊपर मुअल्लक करके दिया गया कि जबरदस्ती मजबूर किया गया कि तुमने ये मानना है। तो क्या ये सही है जबरदस्ती किसी को कहना? असल में बात ये है कि जब कोई इस्लाम में दाखिल ना हुआ हो तब तो कोई जबरदस्ती नहीं, ला इकराह फिद दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। लेकिन जब कोई दीन के अंदर दाखिल हो जाए तो फिर उसको मानना है, नहीं मानना तो मानेगा तो सख्ती भी है उसके लिए। और ये ऐसे ही है, मिसाल से समझे कि जैसे कोई किसी कंट्री में नहीं दाखिल हुआ तो उसके ऊपर उसका कानून नहीं नाफिज होता। अब कोई नहीं उस मुल्क में, बाहर बैठ के वो जो मर्जी करता रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वंस वो उस मुल्क की सरहद पार करके अंदर आ जाता है तो उसके ऊपर तमाम कानून लागू हो जाते हैं जो उस मुल्क के हैं। इसी तरह जब इस्लाम से बाहर है कोई तो उसके ऊपर कोई कानून नहीं है, वो नहीं नमाज पढ़ता, वो नहीं को रोज़ा रखता, वो नहीं कोई अच्छा सलूक करता किसी से, उसके ऊपर कोई कानून नहीं है क्योंकि तो उसने माना ही नहीं। ये कानून उनके लिए हैं जो कहते हैं हम मान गए, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, उन्होंने कहा हमने सुन लिया, और बजाय इसके कहते समय ना वाता ना, उन्होंने कहा समय ना वासना। और ईमान क्या होता है? ईमान तो समेना व अताना है। हाँ, ईमान होता ही नहीं है अगर समेना के बाद अताना ना आए। इवन उलमा कहते हैं अगर अताना में भी तरद्दुद का वक्फा आ जाए कि इंसान सोच रहा है समेना, मैंने सुन तो लिया है, मैंने मानना है कि नहीं, मैं सोच रहा हूं, अभी सोच में पड़ा हुआ है, तो ईमान उसके अंदर नहीं है। क्योंकि ईमान तो कहता है सुन लिया और मान लिया। अल्लाह अकबर। जो बड़े अपने आप को अकलमंद समझते हैं ना, वो तो कहते हैं हमने सुन तो लिया लेकिन अभी हम सोचेंगे, गौर करेंगे, देखें अब ऐसे तो नहीं ना कर सकते, मशवरा करेंगे किसी से। तो याद रखें, जब आप सुन लेते हैं और आप इस तरह की एक्सक्यूजेस देते हैं कि हम कर लेंगे, अच्छा अभी करेंगे ना, कल परसों, कल परसों, वो कभी नहीं आता, तो इसका मतलब ईमान नहीं है। ईमान तो ये डिमांड करता है कि जब सुन लें तो मान लें। ईमान वालों की सिफत अल्लाह ताला ने कुराने पाक में फरमा दी है वक़ालू समयना वाताना। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमने सुन लिया, हमने मान लिया, वो मान जाते हैं फौरन। इसलिए कि जब आपने अल्लाह ताला की जात को मान लिया वो हमारा इलाह है, तो उसके बाद तो मानने में कुछ, उसकी बात को मानने में तो कोई तरद्दुद नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने पहले भी देखा है ना, हमने पीछे पढ़ा है कि वो लोग जो कमाई करते हैं, सैया सैया उन्होंने कमा ली और उसने उनका अहाता भी कर ली उस सैया ने। और सैया क्या थी, हमने बताया कि कोई भी कबीरा गुना को सैया कहा गया, और कमाई की यानी जानबूझ के किया, ऐसा नहीं है कि उस बंदे को पता नहीं था, कसब किया उसने उसको। कसब के अंदर एक मेहनत होती है, कोशिश होती है, उसको कोशिश को करके उसको उसने अंजाम दिया है, और फिर उसको करता रहा। यानी ये पीछे हम पढ़ चुके हैं कि वो उसका आयत 81 में, कि उसका लाइफ स्टाइल बन गई, उसने उसको सराउंड कर लिया, वो उससे निकला नहीं, उसने कभी सोचा नहीं कि मैंने इससे निकलूं, और उसी के ऊपर रहा। कभी उसकी डिक्शनरी में था ही नहीं कि मैंने इसको छोड़ना है, इस गुनाह को, यानी मैंने इससे बचना है, इस गुनाह से। वो उसका लाइफ स्टाइल बना रहा, और इसी में उसको मौत आ जाती है, तो क्या है उसके लिए? अल्लाह ताला ने फरमाया, उलाए फाउलाए का असहाब नार, वो आग के साथी हैं फिर, जो फिर इस तरह से करते हैं कि कोई कबीरा गुनाह हुआ है और बस उसको लेकर सारी जिंदगी उसके साथ रहे, दे डोंट केयर के जो है ना, अच्छा हो गया, जानबूझ के करते हैं, ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है, वो जानबूझ के करते हैं, और ये कसब से हमें पता चलता है वर्ड से, और कबीरा गुनाह करते हैं, कोई गलत फहमी नहीं है, कोई कुछ नहीं, और मुसलसल करते रहते हैं, तो ईमान खत्म हो जाता है। ईमान फिर वो रह जाता है जो, जैसे चीज बाहर बाहर से तो ईमान है, मजहब के खाने में मुसलमान लिखा हुआ है, इस्लाम लिखा हुआ है, लेकिन ईमान अंदर नहीं है, तो एक गुना भी ऐसा हो सकता है। इसलिए इंसान कभी ये ना सोचे कि हमने सुन लिया है, कोई बात नहीं, कर लेंगे ना, इतनी भी क्या जल्दी है, और सोचने की अभी इसके पर जरूरत है, देखेंगे फिजिबिलिटी, देखेंगे फिजिबल भी है हमारे लिए ये करना कि नहीं है, तो बड़ी सोचें विचारों में पड़ जाते हैं तो, और उसके बाद भी करते ही नहीं है, समय ना वाह सही ना, उनका भी रवैया यही है, चाहे मुंह से ना बोलते हो, हमने सुन लिया मानना नहीं है। और यहूदियों का तो ये तरीका ही था, जैसे रायना को राईना कह दिया, हमारी बात सुनिए से, राईना यानी हमारे चरवाहे, तो ये तो हमेशा जुबान को ऐसे बल दे के ना, तो फिर ऐसी बातें किया करते, जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि जब इनको कहा गया था कि आप एक शहर में दाखिल हो और ऐसे कहो हित्ता तुन, तो उन्होंने इसको बदल दिया, तो इनके ये तरीका ही था कि ये इस तरह जुबान को मरोड़ के बात करते थे। कोई फिर कहे अगर इनसे कि ये आपने क्या किया, तो कहेंगे हमने क्या किया, हमने तो वही कहा था, आपको कोई आया ऐसा सुना होगा, हमने तो कुछ गलत नहीं कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे तो कहते थे सामो अलैकुम, साम मतलब मौत, मौत हो, अस्तगफिरुल्ला, मौत हो आपके ऊपर। और अगर कोई कहेगा क्या कहा तुमने, साम का, नहीं नहीं हमने तो सलाम का, आपको नहीं सुना, कैसी बातें करते, तो ये इनका हमेशा से तरीका था, कह रहे हमने सुन लिया, हमने मानना कोई नहीं है। अब अपने आप को सोचें, कभी कुरान की आयात मेरे सामने आती है, मेरे से भी तो हैद लिया गया, जब मैं मुसलमान हूँ तो अल्लाह ताला ने जब मुझे हुक्म दे दिया, तो आप देखें वो ये नहीं होता कि मैंने कब कहा था कि मैं मानूंगी, आपने जब कलमा पढ़ लिया ना, तो आपने मान लिया है कि मैं इस्लाम के तमाम अहकाम को मानती हूँ, पॉइंट ब्लैंक। जब आप आ, 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 कलमा पढ़ लेते हैं तो आप एक मुआहदे के अंदर बंध जाते हैं, और उसको आपको निभाना है। अब ये देखें कि ये लोग क्या करते थे, कि वो उनको कहा गया कि इसको सुनो और इसको अमल करो और कुव्वत से पकड़ो, जैसे कहते हैं ना जुड़ जाएं इसके साथ, कुरान के साथ जुड़ जाएं, तो मतलब क्या होता है, ये नहीं होता कुव्वत से पकड़ लेना, मैं तो किताब को जोर से पकड़ा, मैं नहीं, मतलब है कि यानी इसकी हक अदा किया जाए, इसको सीखा समझा, इसके ऊपर अमल किया जाए, इसको आगे पहुंचाया जाए, लेकिन कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता, और समय ना तक भी नहीं हम पहुंचते कि हमने सुन लिया, बाद की तो जवाब बाद में है, हम तो सुनना भी नहीं चाहते, وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, جہنم والے کہیں گے کاش ہم سن لیتے, سن تو لیتے تو آگے ہی پھر عمل ہوتا نا, لیکن آج تو ہم نے سننا بھی بند کر دیا کہ ہم کتاب کو سن لیں. آگے تو جواب دینا بعد کی بات ہے, اور جو سن لیں وہ بھی آدھے سے زائد ہم ایسے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں اتانا کہنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا, کوئی پلان نہیں ہوتا, اس کے اوپر بھی ہمیں بہت سوچ بچار کرنی ہوتی ہے. کیونکہ اب اگر وہ چیز وہ ہمیں سوٹ کرے گی تو ہم کریں گے, ورنہ ہم چھوڑ دیں گے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, وہی حال ہو گیا ہے نا کہ سننے کے بعد ابھی ہم نے ڈیسائیڈ خود کرنا ہے, تو پھر ہم نے کلمہ کیا پڑھا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا الہ مان لیا, تو پھر تو کیا ہم نے پڑھا کہ اگر ہم یہی کریں گے کہ ہم نے پک اینڈ چوز کرنا. تو وہ کہنے لگے سمعنا وعصینا واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم, اور پلا دی گئی ان کو ان کے دلوں میں عجل کی محبت بکفرہم, ان کے کفر کی وجہ سے, یعنی ان کے دلوں میں بچھڑا ہی بس گیا ہوا تھا. پلا دی گئی کا مطلب کھلا دی گئی نہیں کہا گیا, کھلا دی گئی ان کو محبت, پلا دی گئی کیوں, جو چیز کھائی جاتی ہے وہ تو بعد میں جا کے جسم کا حصہ بنتی ہے, جو پی جاتی ہے نا وہ فوراً جا کے سارے جسم میں سرایت کر جاتی ہے, سب جگہ پہنچ جاتی ہے, رگ رگ میں چلی جاتی ہے. تو ان کے رگ رگ میں بچھڑا ہی بس گیا تھا, اتنی اس کی محبت ہی وہی ان کے دماغوں میں تھا. تو اب وہ اس کی وجہ سے محبت اتنی تھی, اس کی وجہ سے اب یہ نہیں آتے تھے کتاب کی طرف, کیونکہ کتاب تو جو کام کہے گی وہ مرضی کے خلاف ہے, خواہشات کے خلاف ہے, اور ان کی خواہش کیا تھی, بچھڑا. لیکن اشربو آیا, پلا دی گئی. اب کوئی کہے دیکھیں وہ بیچاروں کا کیا قصور ہے, ان کو تو پلا دی گئی تھی نا اس کی محبت, ان کی دلوں میں ڈال دی گئی تھی. لیکن آگے بھی تو دیکھیں کس وجہ سے یہ ہوا تھا, بھی کفری ہم, تو انسان کا اپنا ہی کوئی رویہ ہوتا ہے, وہ یہ نہیں کہہ سکتا اور مجھے ہدایت نہیں ملی, مجھے ہدایت اللہ نے دی ہی نہیں تو میرا کیا قصور ہے. کوئی اپنا ہی رویہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے. اسی طرح یہاں پر ان کے اپنا ہی قصور تھا کہ یہ محبت ان کے دلوں کے اندر پلا دی گئی. قصور کیا تھا, کفر. یہ ایسے ہی نہیں ڈال دی جاتی, اگر ان کے اندر ایمان ہوتا, اللہ تعالی سے محبت ہوتی, تو پھر ایسا نہ ہوتا, لیکن ان کے اندر تو ایمان ہی نہیں تھا, کفر تھا, تو اب یہ محبت ان کے اندر ڈال دی گئی. تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے, یہ دیکھیں انسان اپنے آپ کو اندر دیکھا کرے. کوئی بھی چیز آپ کو ایسی لگتی ہے نا, مثلا لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی کہ اگر کوئی بات کا آپ کو اثر نہیں ہو رہا, قرآن کا اگر اثر نہیں ہو رہا, تو ہم نے کیا دیکھنا ہے, یہ نہیں دیکھنا کہ اب ہم کیا کریں, اللہ تعالیٰ ہی نہیں ہمیں چاہتا کہ ہم ادھر آئیں. دیکھیں میرے دل کی سختی کی وجہ کیا ہے, کیا بات ہو گئی, میرا دل اتنا سخت ہو گیا, میرے اپنے کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے میرے دل میں یہ سختی آئی ہے. پھر اسی طرح اگر ہمارا بھی کوئی عجل ہے, دیکھیں ہر ایک نے کوئی نہ کوئی چیز اپنا عجل بنائی ہوئی ہے جس سے اس کو اتنی محبت ہے, شدید محبت ہے, کہ اس کے دل کے اندر وہی چیز بسی ہوئی. کسی کے لیے اولاد ہو سکتی ہے, کسی کے لیے اس کے جاب ہو سکتی, کسی کے لیے اس کا کام کاروبار ہو سکتا ہے, کسی کے لیے اس کا کوئی خاندان ہو سکتا ہے, جس کی محبت اس کو پلا. اب اس کو سمبولیکلی لیں نا آپ, اگر عجل صرف وہ گوشت پوش کا عجل نہیں, وہ تو ہمارا نہیں ہے, لیکن کوئی تو ہمارا بھی بت ہے نا جس کو ہم پوجتے ہیں, اور اس کی محبت ہمارے دلوں میں سرایت کی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے پھر ہم نہیں مانتے. یا تو وہ دنیا داری ہے, یا تو وہ اپنا نفس ہے, اتنی محبت ہے اس کی, اتنی محبت ہے. سب سے بدترین معبود جس کی پوجا کی جائے گی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, وہ انسان کا اپنا نفس ہے. انسان آج جو آج کا انسان ہے نا, وہ بتوں کی تو کم ہی ہے پوجا, یا یہ سب سے بڑا بت جو ہے وہ اس کے اپنے اندر ہے, اس کا اپنا نفس ہے. ہر کوئی کہتا ہے میں نے اپنی مرضی کرنی ہے,
एक तो मैं जेंडर भी अपनी खुद डिफाइन करूंगा कि मैंने इससे मुतमईन नहीं हूं कि अल्लाह ताला ने मुझे मर्द या औरत बना दिया, मैं तो खुद बनूंगा, मैं खुद डिसाइड करूंगा मैंने कुत्ता बिल्ली बनना है या मर्द है तो औरत बनना है, औरत है तो मर्द बनना है। तो कोई ना कोई ये अंदर बुत है ना जो कहता है, जिसकी मानने के लिए इंसान किसी हद तक भी चला जाता है, वो नफ्स है। और आज चाहे मुसलमान है चाहे काफिर हो, सबसे ज्यादा नफ्स के पुजारी आपको दुनिया में मिलेंगे, जिनके अल्टीमेट एम ये है कि हमारा अपना आप किस चीज से खुश होता है, दैट्स इट। ना किसी की फिक्र है, ना किसी रिश्ते की, ना किसी ताल्लुक की, इवन दुनिया की और चीजों की भी कोई फिक्र नहीं, बस जहां मेरा नफ्स चाहे। अल्लाह अकबर। तो देखते हैं हम यहां पे कि मसला ये नहीं है इजल का, मसला ये है कि इंसान कौन सी चीज को ऐसा समझता है कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, और ये उसके अपने की अंदर कोई खराबी होती, जैसे यहां पे बेकुफरी है मैं ना, उनके अपने अंदर कोई खराबी थी जिसकी बुनियाद के ऊपर वो या इस लेवल पे पहुंच गए। अब इंसान कह सकता नहीं मेरे अंदर तो कोई कुफर नहीं, कुफर और इस्लाम इससे डिफाइन नहीं होते कि मैं अपने आप को क्या कहलाती हूं या मेरा नाम क्या है, वो इंसान के अमल से डिफाइन होते हैं। तो एक बंदा कहता है, जब अल्लाह ताला की आयत सुनता है तो क्या फौरन सर झुका देता है, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, इस कौला लहू रब्बुहु अस्लिम कौला अस्लम तुली रब्बिल आलमीन, फौरन झुक गए। और एक है सोचेंगे देखेंगे, देखते हैं क्या करते हैं, अभी घर जाएंगे अभी मशवरे करेंगे। तो एक किरदार समेना वाताना का है और एक किरदार समेना वासीना का है। मेरा किरदार कौन सा है जब मैं कुरान की आयात सुनती हूँ? हम बाज दफा किसी दर्स में भी बैठते हैं, किसी क्लास में भी बैठते हैं, तो दिमाग में क्या होता है, सुन लेते हैं लेकिन करना किसने है, छोड़ो सुन लें बस, करना हमने वही जो हमारे लिए सूटेबल है, थोड़ी आपके हम हर चीज ही मानना शुरू करते। तो दिमाग पहले से बनाया होता है करना किसने है, वो असैना ही तो है ना, मुंह से चाहे ना बोले। और जब इंसान के अंदर ऐसी मोहब्बतें आ जाती हैं गैर उल्लाह की, क्योंकि जो ईमान वाले होते हैं वो क्या, लजीना आमन व अशद्द हुब्बन लिल्लाह, वो तो ईमान वाले तो शदीद होते हैं अल्लाह ताला की मोहब्बत, तो अल्लाह ताला उनको राह भी दिखाता है। और जब और मोहब्बतें अंदर रची बसी हुई हैं, वो मोहब्बतें ही जान नहीं छोड़ती, तो क्या ईमान है फिर? ईमान वालों की तो सबसे शदीद मोहब्बत अल्लाह ताला से है। कुल कह दीजिए बि समा या मुरुकुम भी ईमान कुम इन कुन तुम मुमिनीन, कह दीजिए नबी इनसे कितना बुरा है जो हुक्म देता है तुमको साथ इसके ईमान तुम्हारा, यानी ये कितनी बुरी चीज है जिसका तुम्हारा ईमान तुम्हें हुक्म दे रहा है, ये किस किस्म का ईमान है जो तुम्हें कुफर का हुक्म देता है, जो तुम्हें ये बदामालियों का हुक्म देता है, जो तुम्हें समेना वासीना कहने का हुक्म देता है, ये किस किस्म का ईमान है? मतलब आप ईमान के दावे इतने करते फिर, हम बड़े ईमान वाले हैं, हम ऐसे हैं, तो ये कौन से ईमान है जिसकी बात हो रही है? और ये खैर ये नहीं वो कह रहे कि हमारा ईमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है, वो कहते थे वैसे हमारा ईमान है, हम देखें अल्लाह को मानते हैं, हम रसूलों को मानते हैं, क्या हुआ अगर हमने ये सिर्फ दो रसूलों का तो इनकार किया, कौन सी ऐसी बात हो गई, बाकी हजारों रसूल गुजरे उन सबको हम मानते। अल्लाह अकबर। तो कहा गया ये किस किस्म का ईमान है, इसका मतलब क्या हमें समझ आई इस कि मुंह से बोलना कि भाई मैं बड़ी ईमान वाली, मैं बड़ी ईमान वाली, इसकी बड़ी बुलंदोबांग दावे करते रहना और खुद को अपने आप को बताते रहना हम ईमान वाले हम ईमान, इससे कुछ नहीं होता जब तक ये ईमान वाकई अमल में ना ढल जाए, जब तक ये ईमान दिल के अंदर ऐसा ना आ जाए कि उस अल्लाह ताला की मोहब्बत सबसे बढ़ के हो, वो है जो ईमान है, वो फिर इंसान से अमल भी कराता है। लेकिन अगर ऐसा ईमान है जिसको बस दावे ही दावे हैं, नजर तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो फिर वो क्या ईमान है? कहते हैं ना कि दरख्त भी अपने फल से पहचाना जाता है, तो तुम्हारा ये कैसा ईमान है जो तुमसे कुछ काम ही नहीं कराता, बल्कि तुम तो ये कहते हो हमने नहीं मानना। अल्लाह अकबर। तो आज देख लें, दावे इतने हमारे, हम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, हम ऐसे, हम वैसे, हम तो सबसे पहले, हमने जन्नत में जाना है, हमने ये, लेकिन हमारे एक्शंस क्या हैं? क्या हमारे एक्शंस भी ऐसे नहीं है कि हमें भी ऐसे नहीं लग रहा कि हमें ये बातें कही जा रही? कितना बुरा है तुम्हारा जो ईमान है, कैसा ईमान है तुम्हारा जो तुम्हें इन बातों का हुक्म देता है? आज जितनी बेहयाई, जितनी लादीनियत, जितना शिर्क हो रहा है हमारे अपने अंदर, उसके बाद आप बताएं कि क्या ये ईमान है तुम्हारा जो तुमसे ये चीजें करा रहा है? किस किस कम का ईमान है? लेकिन दावों में हम सबसे आगे हैं। कुल कह दीजिए, इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतन, कह दीजिए ए नबी, आप इनको कहें एक बात कि अगर तुम्हारे लिए यह दारुल आखिरा अल्लाह के हाँ, यानी अल्लाह ताला के हाँ, जब तुम जाओगे बकौल तुम्हारे, तुम कहते हो कि हमारे लिए आखरत का घर, यानी वहां की जन्नत मुराद है, जन्नत हमारे लिए अल्लाह के पास खालिस, सिर्फ हमारे लिए, मिन दून नास, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ हमारे लिए है, तो जरा फिर ये तो सोचो यहाँ पे बैठने की जरूरत क्या है इस दुनिया में? फिर तुम्हें फतमन्ना बुल मौत इन कुंतुम सादिकीन, फिर मौत की तमन्ना करो ना अगर तुम सच्चे हो। तुम तो कहते हो ना तुम्हें तो जन्नत मिली, तो ये मुसीबतों की दुनिया में रहने की जरूरत क्या है? यहाँ पे तो इतने बखेड़े हैं, इतनी मुश्किलात हैं, इतनी परेशानियां हैं, आए दिन के मसले मसाइल हैं, यहाँ पे रह क्यों रहे हो? तुम्हें अगर इतना कन्फर्म है जैसे तुम कहते हो, बस जन्नत तो हमारे लिए, जन्नत तो का घर हमें ही अल्लाह ताला ने देना है, किसी और के लिए नहीं, तुम यहूदी हो, आगे आप पढ़ेंगे, यहूदी हो जाओ तो फिर तुम जन्नत में जा सकते हो, वरना नहीं जा सकते। अगर वाकई तुम्हें यही यकीन है कि तुम्हारे लिए ही अल्लाह ताला ने खालिसतन रखा हुआ है वहां पे जन्नत का घर, तो छोड़ो इस दुनिया की मुसीबतों और मुश्किलात को, फिर अल्लाह ताला से दुआएं करो कि हमें मौत दे दे। ये कभी भी नहीं कहेंगे वलन यतमन्नहु अबदम, कभी भी नहीं मौत मांगेंगे, ये इनकी सरिश्त है, कभी नहीं सवाल करेंगे मौत का कि अच्छा फिर सीधा सीधा कहा गया ना, ये भी इनका पोल खोल दिया गया, इसकी भी हकीकत देख लो, ये जो तुम्हारा दावा है ना कि हमारे लिए ही है, हमारे लिए ही है, इसके ऊपर खुश होते रहते हो, अगर हम कहीं जहन्नुम में गए भी तो थोड़े दिन के लिए, और बास कहते थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो जहन्नुम के दरवाजे पे बैठे होंगे, कोई जो बनी इसराइल का बंदा होगा उसको तो जहन्नुम में जाने नहीं देंगे, वो इतने बड़े बड़े दावे करते थे, अगर हम बिलफर्ज चले भी गए तो फिर हमने तो बस थोड़े दिन ही जाना है, कोई कहते थे 7 दिन, कोई कहते थे 40 दिन, ये अपने आप को इतनी बड़ी चीज़ समझते थे, तो फिर यहाँ पे बैठने की ज़रूरत क्या? मुसीबतों की दुनिया में जाओ। आप सरसर ने फरमाया ना, दुनिया जो है सिजन मोमिन है, मोमिन के लिए दुनिया जो है सिजन है, कैद खाना है, और काफिर के लिए जन्नत है। काफिर तो यहीं पे मजा करता है, उसकी यही दुनिया है जिसकी वो तमा रखता है, और इसी को जन्नत बनाना चाहता है, वो नहीं चाहता कि वो वहां पे जाए, क्योंकि उसको पता है बीमा कद्दमत अईदीहिम, जो उन्होंने करतूत किए हुए हैं, जो उन्होंने आगे भेजा हुआ है उनके हाथों ने, मतलब क्या है उनके आमाल, आगे भेजना मतलब क्या अल्लाह ताला के पास भेजी, यानी अमल कर करके जो काले करतूत किए हुए हैं, जो गुनाह किए हुए हैं, उनको पता है कि उनके लिए क्या है वहां पे, इसलिए कभी भी नहीं तमन्ना करेंगे। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अगर ये तमन्ना कर लेते तो इनमें से एक भी बाकी ना बचता। इब्ने कसीर लिखते हैं कि इसमें मुबाहला की दावत है, यानी मुबाहला क्या होता है कि दोनों फरीक जब एक चीज के ऊपर इत्तेफाक नहीं कर रहे तो दोनों मिलते हैं और कहते हैं कि अगर तुम झूठे हो तो तुम्हारे ऊपर अल्लाह की लानत है, हम झूठे होंगे तो हमारे ऊपर अल्लाह की लानत होगी, जो झूठा उसके ऊपर अल्लाह की लानत, और वो हलाक हो जाए। ईसाइयों के साथ तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी थी, आगे आएगा आले इमरान में दावत दी थी कि तुम आओ मुबाहले के लिए, वो आए नहीं थे, उन्होंने शो अप ही नहीं किया था, इसलिए कि उनको पता था अगर हमने ये कह दिया तो ये अल्लाह के नबी हैं, इन्होंने अगर कह दिया ना जो झूठा है तो वो हलाक हो जाएगा, तो हम तो बचेंगे ही नहीं। तो इनको भी मुबाहले की दावत है कि तुम तमन्ना करो ना मौत की, वैसे मौत की तमन्ना करने से मना किया गया, कोई इंसान मौत की तमन्ना ना करे, बल्कि हमेशा यही कहे कि अगर उसको तंग भी आ गया ना तो यही कहे कि अल्लाह जब तक मेरे लिए जिंदगी बेहतर है तो उस वक्त तक मुझे जिंदा रखना, जब मेरे लिए जिंदगी बेहतर ना हो तो ऐ अल्लाह तू मुझे अपने पास बुला लेना। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी हमें सिखाई है कि ऐ अल्लाह जब तक मेरी जिंदगी मेरे लिए खैर है तो ऐ अल्लाह उस वक्त तक ही मुझे जिंदगी अता फरमाना, वजाल हयात ज्यादा तल्ली फी कुल्ली खैर वजाल मौत राहत तल्ली मिन कुल्ली शर, ए अल्लाह जिंदा मुझे तब तक रखना जब तक भलाई का सबब बनता रहे, मेरे लिए भलाई के दरवाजे खुलते रहे, मैं नेकियां करता रहूं और मौत मेरी तब हो के मेरे लिए राहत का सबब बने। अल्लाहुम्मा असलली दीनी अल्लज़ी हुवा इस्मतु अमरी, ये वाली दुआ जो मसनून दुआ है इसका एंड यही है कि अल्लाह मेरी ज़िंदगी को ऐसा बनाना जिसमें खैर बढ़ती रहे, जो मेरी वही ज़िंदगी हो ऐसी ही हो जिसमें नेकियां ही बढ़ती रहे मेरी, वो वाली ज़िंदगी देना। तो वैसे इंसान के लिए जायज़ नहीं है, लेकिन ये उनका पोल खोलने के लिए कि ये कभी भी नहीं करेंगे, और उन्होंने नहीं की कभी, लेकिन बातें इतनी बड़ी बड़ी। तो जिस इंसान ने अल्लाह ताला के साथ ऐसा मामला रखा सारी जिंदगी कि वो खालिस अल्लाह ताला के लिए अमल करता रहा और उसकी जिंदगी वो थी कि इन्ना सलाती व नुसुकी व माहिया व मवाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन, के मेरा नमाज और कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना मेरे रब के लिए, जिसने वाकई इसी तरह जिंदगी गुजारी हो ना, उसको फिर कोई वो नहीं होता कि मैंने मर जाना है तो हाय अब क्या होगा। ये खौफ उस शख्स को आता है कि जिसने कुछ किया नहीं होता, वो कहता है ओ हो, अब वो वक्त आ गया जाने का, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं, तो वो खौफजदा होता है। वरना एक मोमिन जो होता है वो मौत से कभी डरता नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह ताला से हुस्ने जन रखता है, उसको पता है कि मैंने नेक आमाल किए हैं और अल्लाह ताला मेरी नेकियों को जाया नहीं करेगा और मैंने पूरे खलूस से किए। तो जैसा फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, जैसा इंसान अल्लाह ताला से गुमान करता है अल्लाह ताला भी उसके लिए वैसा ही करता है। तो जिसने अल्लाह ताला को महबूब बनाया और फिर उसके लिए जिंदगी लगा दी, उसको क्या फिर मसला है? जिसने यहाँ पे अपने हकूक पूरे किए वो फिर अल्लाह की रहमत की तरफ देखता है। उम्मीद और खौफ के दरमियान ही है ना ईमान। तो लेकिन मोमिन कभी मौत से डरता नहीं है, और आप देखें इसी वजह से आप देखते हैं कि यहूदी कभी भी सामने आकर लड़ने के काबिल नहीं रहे। मदीना में भी 3 कबाइल थे, तीनों ऐसे थे कि वो जिला वतन हुए या मार दिए गए, लेकिन वो कभी आमने सामने नहीं आए जंग में किसी में। और इनका यही शेवा रहा है इनकी हिस्ट्री में कि ये छुरा घूमते हैं पीछे से मुनाफिकों की तरह, ये साजिशें करते हैं, डील्स बनाते हैं, लेकिन सामने आके लड़ना ये नहीं जानते। और मोमिन जो होता है वो मरने से डरता नहीं। मैं देखे ना, आप सहाबी रसूल हैं, उन्होंने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक गजबे के मौके पे पूछा, जंग हो रही थी, या रसूलल्लाह अगर मैं जंग में लड़ते हुए शहीद हो जाता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? आपने फरमाया जन्नत। खजूरें खा रहे थे तो खजूरें इधर फेंकी, कहते हैं इसमें भी देर हो जाएगी कि मैं ये खाऊं, इतनी देर भी मैं क्यों करूं जन्नत में जाने के लिए, तो मुझे उससे भी ज्यादा जल्दी करनी है, इसमें भी देर लगेगी, तो मैदान में जंग में गए और शहीद हो गए। तो मोमिन को तो अल्लाह के वादों पे भरोसा है। मैंने वाकई हाँ, उसको हमारे जैसे लोगों को इसलिए डर लगता है कि हमने कुछ नहीं किया हुआ, हमें पता है कि हमने नहीं किया हुआ, हम जानते हैं, हमें अपने गुनाहों का भी पता है, हमें अपने जो भी हमने जिंदगी के अंदर कमियां की, जो भी कोताहियां की, हमें पता है कि हम उसके ऊपर पूरा नहीं उतरते। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। और अल्लाह ताला खूब जानता है जालिमों को। अलीम के अंदर क्या है? पूरी पूरी तरह जानना, खूब जानना, और ये भी मुसलसल हर चीज उनकी जानता है। तो अल्लाह ताला ने आगे इनकी और बात फरमाई, बल्कि मौत की तमन्ना तो इन्होंने क्या करनी है, वाला तजिदन्नहुम अहरसन्नास, और तुम देखोगे इनको, तुम जरूर पाओगे इनको अहरस, जैसे अकबर होता है सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा हरीस, अन्नास लोगों में, अला हयात जिंदगी पर, यानी सबसे ज्यादा इनको तुम हरीस पाओगे कि ये तमन्ना रखते हैं जीने की, अला हयात है ना, जीना चाहते हैं, इतनी इनकी तमन्ना है। तुम सबसे ज्यादा इनको देखोगे कि इनके अंदर ये है कि हम कभी मरे ना। वमीन अल्लदीना अशरकू, इवन मुशरिकीन से भी ज्यादा, मुशरिक भी जो थे वो मुसलमानों के आगे आके लड़ते थे, और बड़ी बहादुरी से लड़ते थे, वो भी सामने से वार करते थे, मारे भी जाते थे। तो उतनी ज्यादा उनको हिर्स नहीं थी जितनी इनको हिर्स थी कि हम जिंदा रहे। अल्लाह हु अकबर। तो देख लें आपके वो जो दावा करने वाले कि अल्लाह के पास हमारे बहुत ऊंचे मकाम है, उनकी हालत क्या हो गई थी। और ये मुसलमानों के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशीन गोई फरमाई भी है, जो हदीस आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक वक्त आएगा कि दुनिया की कौमें एक दूसरे को दावत देंगी तुम्हारे ऊपर, जैसे कि खाने के ऊपर दावत दी जाती है, एक दूसरे को बुलाया जाता है, आओ आओ खा लो, यहाँ पे खाना पड़ा है, दस्तरखान पे बुलाया जाता है ना, इस तरह दुनिया की कौमें दावत देंगी कि मुसलमानों को हड़प करने के लिए। तो किसी ने कहा या रसूल्ला क्या उस वक्त हम बहुत कम होंगे? फरमाया नहीं, बल्कि उस जमाने में तुम बहुत ज्यादा होगे। और आज देखें दुनिया में बिलियंस ऑफ मुस्लिम्स है, हर 5 में से एक बंदा मुसलमान है, लेकिन क्या होगा? मगर आपने फरमाया तुम्हारी हालत ऐसे होगी जैसे किसी सैलाब के ऊपर जो खसो खाशाक होते ना तिनके तिनके, उनकी क्या हैसियत होती है, लहरें उठा उठा के कभी उनको उधर मारती हैं कभी उधर, और अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारे यहाँ रोब निकाल देगा, किस कोई रोब में नहीं होगा, थप्पड़ मारते हैं और मार के चले जाते हैं, और बस बोलते ही रहते हैं खोखले नारे, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, कोई कुछ नहीं कर पाता, हम निपट लेंगे तुमसे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और उसके बाद चीख चिल्ला के और फिर चुप करके बैठ जाते हैं, और तुम्हारे ऊपर वहन की बीमारी आ जाएगी। तो उन्होंने पूछा सहाबा ने कि वहन क्या है? फरमाया हुब्बे दुनिया और कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत इतनी होगी और मौत से कराहत कि हाय मर ना जाए। अल्लाह अकबर, इतनी तुम्हें जिंदगी की हिर्स लग जाएगी। अल्लाह, जब भी किसी कौम को ये होता है ना कि हम को तो आखरत के अंदर बस जन्नत ही मिलनी है और ऐसा ही होना है और हमारी वहाँ पे, तो उसको देखना चाहिए कि आज मौत आ जाती है, या फर्द को किसी को ये होता है तो आज मौत आ जाती है तो मेरे पास कुछ है अल्लाह ताला को दिखाने के लिए। और दूसरे ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि दुनिया मोमिन के लिए तो कैद खाना है, कैद खाने में तो कोई रहना नहीं चाहता ना, तो ये नहीं है कि हम मौत की तमन्ना करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन वो है जिसको अल्लाह ताला लंबी उम्र दे और उसमें नेकी करे, तो लंबी उम्र नेकी करने वाले के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये मतलब नहीं कि हम तमन्ना करें, मगर ये सोचें कि पता चल जाए कि बस अब मौत आने लगी है तो क्या हाल होता है, या ये बताएं कि इस दुनिया को छोड़ने का कितना दिल चाहता है, कि बस अब दुनिया से दिल उकताया हुआ कितना है, या इतना शौक है कि नहीं 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 मैंने जाना नहीं है, मुझे यहाँ से जाने का दिल नहीं करता। अगर अंदर ये कह रहा है तो हमने तो इसका मतलब जन्नत ही बनाई हुई है, हमने कैद खाना तो नहीं बनाई हुई, जहाँ हालांकि यहाँ पे कितनी परेशानी है, आए दिन कोई ना कोई परेशानी, आए दिन कोई ना कोई फितने, कोई ना कोई मसले सर उठाए रखते हैं, फिर भी जाना नहीं चाहते ना, अंदर से पूछे अपने तो समझ लें कि जन्नत बनाई हुई है, कैद खाना नहीं है। पाबंदियों से खुद को आजाद किया हुआ, दीन को कुछ समझते नहीं है। दीन की कोई भी पाबंदी रिस्ट्रिक्शन को अपने ऊपर लागू नहीं करना चाहते, आजाद मन जिंदगी गुजार रहे हैं। तो जिसने इस दुनिया को जन्नत बना लिया, उसके लिए आखिरत में जन्नत नहीं है। दो जगह तो जन्नत मिल ही नहीं सकती, दो जगह नहीं मिलनी जन्नत। जिसने यहां अपनी जिंदगी में खौफ के साथ रहा, अल्लाह ताला वहां पे उसको अमन देगा। और जो यहाँ पे अमन में रहा, जन्नत बना ली उसने, यहीं पे मजे करता फिर रहा है और उसको कोई परवाह नहीं दीन क्या कहता है क्या नहीं कहता, बस मोहब्बत है दुनिया से और यहीं जीने के अरमान है, तो फिर आखरत में उसके लिए खौफ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला दो अमन और दो खौफ जमा नहीं करता। मैंने ये नहीं हो सकता कभी भी कि यहाँ पे भी अमन हो और वहाँ पे भी अमन हो, या यहाँ पे आप डरते रहे और वहाँ पे आपको अल्लाह ताला फिर वहाँ पे एक डरानी वाली चीज़ के सामना करना पड़े, वहाँ पे जहन्नुम हो, नहीं, फिर अल्लाह वहाँ पे बेखौफ कर देगा, अल्लाह सुबहाना ताला वहाँ पे अमन दे देगा जो यहाँ पे डर के रहा। तो डरते रहें यहाँ पर कि हमसे नहीं इतना हो पाता, तब भी डरते रहें और अपनी कमियाँ कोताहियाँ समझें कि हमने कोशिश करनी है और उसके लिए हिम्मत जुटाएं। ये नहीं कि हमसे तो होता ही नहीं, जब भाई आपने पहले ही मान लिया हमसे होता ही नहीं, तो आपने तो मान ही लिया कि मैंने करना ही नहीं है, होता ही नहीं, बस ठीक है, इसके पर मुतमईन है। और साल हा साल गुजरते जा रहे हैं, होता ही नहीं हमसे, क्या करें होता ही नहीं, क्या करें होता ही नहीं, बस। तो आपने फैसला तो कर ही लिया कि नहीं करना मैंने, तो हमने हिम्मत करनी है। क्योंकि अगर हम अपने गिरेबानों में झांकते हैं तो वाकई यही होता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो मलकुल मौत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए थे, और उनके साथ जब सामना हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम ने घूंसा मारा उनको, उन्होंने अल्लाह ताला से शिकायत की। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को ऑप्शन दिया कि आप जानवर पे हाथ रखें, जितने बाल इसके आपके हाथ के नीचे आते हैं ना, उतने साल आपकी ज़िंदगी और बढ़ाई दी जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, फिर इसके बाद क्या होगा उतनी ज़िंदगी के बाद? फरमाया, उसके बाद फिर मौत ही है, यानी मौत से तो कोई नहीं बच सकता। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर अब मरना ही है तो अभी ही सही। हाँ, मरना है तो फिर अभी ही सही, कि फिर ठीक है मैं मरने के लिए तैयार हूँ। तो जितना भी कोई जी ले, आखिर तो एक दिन जाना है। कोई ना नबी यहाँ पे रहा, ना कोई वली रहा, ना कोई पहलवान रहा, और ना कोई बादशाह। हाँ, ये है कि जिसने अपनी जिंदगी नेकियों में गुजार दी, उसकी लंबी जिंदगी भी उसके लिए फायदेमंद है। उसकी अगर सगर किसकी है कि मैं और नेकियां करूं और नेकियां करूं, तो वो एक अलग चीज है। और जैसे एक सहाबी दुनिया से जाने वाले थे, तो तब उन्होंने फरमाया था ना कि अल्लाह ताला जानता है कि मुझे दुनिया से, दुनिया की जिंदगी से मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ इसलिए थी कि मैं गर्मियों के रोजे रखूं और सर्दियों की रातों में कयाम करूं। गर्मियों के रोजे कितने मुश्किल होते हैं, हम तो देखते हैं जब सर्दी आएगी तो फिर छोटे छोटे वाले रोजे अपने मेकअप करने के लिए उस वक्त रखेंगे, है ना, अल्लाह अकबर। और गर्मियों में रोजे रखने से घबराहट होती है, और गर्मियों की रातें छोटी होती हैं, सर्दियों की बड़ी लंबी होती हैं। और लंबी रात में जागना तो बड़ा मुश्किल है, गर्मियों की रातों में तो फिर भी चलो इंसान, थोड़ी छोटी रात है तो जल्दी गुजर जाएगी, तो सर्दी की तो रात गुजरती नहीं। और सर्दी में कौन उठे गरम गरम लिहाफ से, बिस्तर से, और उठ के वुजू करना और खड़े होना, ये तो बहुत ही मुश्किल था। और हमारे तो फिर भी घर इतने कंफर्टेबल हैं, ना कोई ठंडा पानी और ना कोई सर्दी ऐसी और ना कोई ऐसा मसला होता है, वो तो बहुत सर्द उसके अंदर होते थे। तो वो कहते हैं मुझे जिंदगी से मोहब्बत सिर्फ इसके लिए है, सुभान अल्लाह। तो उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए तो फिर जिंदगी, लंबी जिंदगी भी खैर ही खैर है। कहते हैं इसके अलावा उनको कुछ नहीं था कि मैंने और यहाँ पे कोई, अभी तो इतना पैसा कमाना है, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं। और लोग क्या कहते हैं, अभी तो उसने कुछ देखा ही नहीं था। यानी उनके लिए क्या होता है कि देखना, दुनिया देखना ये है मतमाए नजर के, जो है ना, अगर जल्दी चला गया तो हाय हाय, दुनिया तो अभी इसने देखी ही नहीं थी पूरी। फिर एक असलाफ में से एक के बारे में आता है, सुबहान अल्लाह, कि वो गर्मियों के दिनों में अंदर खड़े होके, घर के अंदर रातों को नमाज पढ़ते थे, और सर्दियों के दिनों में अपनी छत पे जाके बाहर खुले में नमाज पढ़ते थे। अब आप सोचें, उलट नहीं होना चाहिए? सर्दियों में अंदर आना चाहिए इंसान को, और गर्मियों में बाहर जाना चाहिए, खुली हवा हो, थोड़ी हवा ही लगे। वो क्यों ऐसा करते थे कि कहीं नींद ना आ जाए। अल्लाह अकबर, जिनकी जिंदगियां ऐसी गुजरने वाली हों, फिर उनके लिए तो जिंदगी लंबी भी बहुत बड़ी बाबरकत है और नेकियों में इजाफा है। और जिन्होंने कुछ नहीं किया हुआ, वो कहते हैं कि हाय हाय हाय, हम तो कभी भी नहीं तमन्ना कर सकते, आए हाय हमें जाने का पता चल गया, ओहो लो अभी तो हमने ये करना था, वो करना था। उनको उस वक्त याद आता है कि हमने करना क्या था, क्योंकि बहुत सारी चीजें पेंडिंग जो हमने रखी होती हैं, कर लेंगे कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, और कुछ भी करना नहीं होता प्रेजेंट में, वो कल के ऊपर छोड़ा हुआ है, कर लेंगे। अब वो ना दिन वो आए और ना हम करें, हत्ता के वो दिन आ जाता है कि हमें पता चलता है कि अच्छा जाने का वक्त आ गया, अब तो अल्लाह माफ करे कि कहीं से ये इत्तला मिल गई कि बस जी आपके पास अब इतने ही दिन रह गए, तब हमें याद आता है। अमीन अल्लादीन अशरकू, उनसे भी ज्यादा ये हरीस है, यवद्दु अहदुहुम लव युअम्मरु अल्फसना, इनमें से हर कोई चाहता है कि वो 1,000 साल जी ले। और इस जीने के लिए आज क्या क्या कर रहे हैं। एक मैंने रिपोर्ट पिछले दिनों ही पढ़ी कि फ्लोरिडा में लॉन्गजेविटी के लिए एक कोई कॉन्फ्रेंस हुई, कॉन्फ्रेंस कह लें या जहाँ पे उन्होंने कुछ भी सेमिनार था, उसमें 5,000 लोगों ने शिरकत की। ये जिसके अंदर ये था कि किस तरह तुम्हारी उम्र लंबी हो सकती है। मैं यही सोच रही थी, इनको कितना शौक है लंबी उम्र का। हालांकि इंसान दुनिया में फितने देखता है तो कहता है कि या अल्लाह बस इन फितनों से बचा के तू ले जा, क्योंकि ऐसे लगता है कि ये दुनिया फितनों से ही भरी जा रही है, एक के बाद एक फितना, एक के बाद एक फितना। और इनको कितना शौक है कि वो दुनिया भर से जमा हो रही है वो उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, कि हमें पता चल जाए कहीं से कि ये किस तरह हमने लंबा जीना है। और लंबा जीने के लिए इनको इंसानों को भी खाना पड़ जाए तो उससे भी नहीं चूकेंगे, इनको गलीज से गलीज तरीन चीज भी करनी पड़ जाए तो उससे भी नहीं रुकेंगे। और आप उसको सबको पता है कि किस तरफ इशारा है, वमा हुआ भी मुजहजी ही मीन अलगा भी अयो अमर, हालांकि नहीं वो बचाने वाली इससे, इस अजाब से, क्या नहीं, क्या चीज नहीं बचाने वाली, ये लंबी उम्र, ये इनकी लंबी उम्र इनको अजाब से तो नहीं बचा सकती। अयो अमर के वो उम्र दिए जाएं, अगर वो उनको उम्र मिल भी जाए, अव्वल तो किसी को 1,000 साल मिलनी ही नहीं, ठीक है, अगर मिल जाती है बिलफर्ज तब भी क्या अजाब से बचोगे, एक दिन तो जाना है ना, फिर क्या करोगे, फिर भी तो अजाब सहना ही है, जो चाहे 1,000 साल भी जी ले, बहरहाल तो खत्म होना है, कोई यहां पे हमेशा नहीं रहा, तो फिर क्या करो, जाना आज हो या कल हो, बात तो एक है, अजाब से बचने की फिक्र होनी चाहिए ना कि भागने की। वो ऐसे ही है जैसे कि एक मुजरिम भागता है भागता है भागता है, वो सोचता है कि मैं कभी भी नहीं पकड़ा जाऊंगा। हाँ शायद दुनिया में तो वाकई कई नहीं भी पकड़े जाते, सारी जिंदगी वो दंदनाते ही फिरते हैं इस तरह के, उनको कोई पकड़ने वाला ही नहीं होता। लेकिन अब सोचें कि अल्लाह के फरिश्तों से कोई भागना शुरू कर दे, किधर भागोगे, ना आसमान ना जमीन, कहाँ भाग सकते हो। या माशर अल जिन्नी वल इंसी इन इस्तता तुम अन तनफुजू मिन अकदार समावाती वल अर्दी फनफुजू ला तनफुजू ना इल्ला बिसुल्तान, तुम चाहते हो ना भागना है। जिन और इंस, जिन्नों को भी कह दिया गया भागो, जाओ जाओ जा जहां पे भी जा सकते हो, जमीन आसमान के किनारे, किधर भागना चाहते हो भागो, तुम नहीं भाग सकते, इसके लिए तो बड़ा जोर चाहिए, तुम नहीं भाग सकते, तुम निकल ही नहीं सकते अल्लाह की गिरफ्त से, उसकी पकड़ से नहीं जा सकते कहीं। तो जैसे पुलिस भाग रही है किसी मुजरिम के पीछे, वो सोचता है कि मैं दूर भाग जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा, तो उन्होंने तो उसको पकड़ ही लिया वह, उसको घेरा डाल दिया वह। एक मछली के कोई फिशिंग करते हो लोग तो उनको पता होता है मछली के मुंह में कांटा फंस जाए ना, जब मछली अब भाग रही है वो उसको लगता है कि मैं आजाद हूं अभी, वो तेज भाग रही है दूर भाग रही है, लेकिन अब उसको ये नहीं पता कांटा तो उसके मुंह में है, वो कितनी भी दूर भाग जाएगी। जिस वक्त मछेरे ने उस डोर को खींच लिया तो वो तो पहले ही उसके काबू में ही है। तो मौत से किधर भाग सकते हो, फरार कोई नहीं है। ये सोचते हैं कि 1000 साल जी लेंगे तो बच जाएंगे अजाबों से, नहीं बच सकते। अल्लाह हू अकबर। तो इंसान जो को कितनी भी लंबी उम्र मिल जाए वो ये ना सोचे कि मैं आगे से आगे टालता रहूं, आगे से आगे टालता रहूं तो शायद मैं बच ही जाऊंगा। मैं जितनी देर यहां पे हूं, मैं पकड़ा नहीं गया, वो उस मछली की तरह जिसके मुंह में कांटा फंसा हुआ है। अब वो मालिक की मर्जी है किस वक्त खींच ले। तो जाना तो है, मगर कितनी तुमने तैयारी की है इन अजाबों से बचने के लिए जो आखरत में। व फिल आखिरती अजाबुन शदीद व मगफिरतु मिनल्लाहि व रिदवान। अल्लाह ताला के पास आखरत में अजाब शदीद भी है और मगफिरत और उसकी रजा भी है। तुमने क्या लेना है, तुम बताओ। वल्लाहु बसीरुम बीमा यामलून। अल्लाह ताला देखने वाला है उसको जो वो अमल करते हैं। देखने वाला बसीर में भी जैसे अलीम है, बसीर है। मैंने आपको बताया फाइल के वजन पे जो भी होंगे उसके अंदर एक तसलसल का दवाम का माना है, और बहुत ज्यादा देखने वाला, अंदर बाहर देख रहा है। उसको पता है किसकी नीयतें क्या हैं, खोट अंदर है और कहते जा रहे ऊपर से, हाँ जी हमें तो वहां पे तो हमारे लिए जन्नत ही है, ये ही है। तो फिर जाओ, फिर तमन्ना करो। अल्लाह ताला को पता है तुमने नहीं करनी। अल्लाह ताला को पता है तुम्हारे दिलों में कितनी हेरस है यहाँ पे जीने की। इस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहते किसी कीमत पे भी। सब कुछ लुटाना पड़ जाए किसी को आबे हयात लेने के लिए तो वो सब लुटा के लेना चाहेगा। वो अच्छी तरह देख रहा भी है और मुसलसल देख रहा है जो वो अमल कर रहे हैं। एक लम्हे के लिए भी वो गाफिल नहीं है लोगों से।